जिस तरफ गंडकी नदी बहती है, ये हिमालय के पूर्व में, वहां चले गए। पहले हरिद्वार गए, पुलह ऋषि के आश्रम में, और इसके बाद फिर गंडकी नदी के तट पर चले गए। तो वहां उनके जीवन में एक घटना घटी और उसी से उनकी कृष्ण भावना में रुचि कम हुई। उस गंडकी नदी के तट पर क्या घटना घटी वो कह लेते हैं कि वे सवेरे के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के जप कर रहे थे। एकदा तो महानद्याम, उस महानदी गंडकी में स्नान किया। स्नान के पहले जो आवश्यक कर्म है, आवश्यक का अर्थ है जो नियम के अनुसार नहीं है लेकिन वो शरीर में आ जाता है फोर्स, जैसे पेशाब करना, मल त्याग करना, तो ये सब काम करके और फिर वे अभिषेक स्नान किए। कुछ काम था जो नित्य नियम के अनुसार करना था, जैसे संध्या वंदन आदि, तो नित्य नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे हम लोग श्री प्रभुपाद की पूजा करते हैं तो यह नियम है, नैमित्तिक कर्म है। स्नान नियम है, पर नित्य त्याग करना, मल त्याग करना ये आवश्यक कार्य है। आवश्यक कार्य का मतलब है अर्थ प्राप्त कार्य, अपने आप करना पड़ता है और करना चाहिए अच्छी तरह से। तो उसको करके राजर्षि भरत स्नान किए, स्नान के बाद एक शिला पर बैठ करके वे ब्रह्माक्षर का जप कर रहे थे। ब्रह्म अक्षर, ब्रह्म मतलब भगवान कृष्ण और अक्षर मतलब उनका मंत्र। वे कृष्ण मंत्र जपने लगे। तो कृष्ण मंत्र हम लोगों के लिए जो बताया गया है, जो भगवान ने स्वयं बताया है चैतन्य महाप्रभु ने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे ये ब्रह्माक्षर है, भगवान कृष्ण का मंत्र है जो कृष्ण को वश में कर सकता है। मंत्र परम लघु जासु बस विधिहरि हर सुर सर्व। रामचरित मानस में कहा गया है कि मंत्र छोटा होता है लेकिन वो भगवान को भी वश में कर लेता है। तो इस महामंत्र को वे जप रहे थे, अभिगणन खूब अच्छा से बोल रहे थे, इसीलिए अभि उपसर्ग लगा है, अभिगणन खूब अच्छा से जप कर रहे थे। एकांत में बैठे थे और मन भी पूर्ण एकाग्र था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे। मन भगवान में लगा था और वाणी महामंत्र का जप करने में, वास्तव में वे उस समय जो जप कर रहे थे प्रणव का जप कर रहे थे, ओंकार का। यह ओंकार बहुत प्रसिद्ध नाम है भगवान का, इसमें भगवान के सभी अवतार और शक्तियों का समावेश है। जैसे कल बता रहे थे भक्ति गौरव महाराज, अ उ म तीन अक्षर से ओम बना है, तो इसमें श्री भगवान हैं और भगवान की हलादनी शक्ति राधा रानी और सभी जीव, तो इस ओंकार का जप कर रहे थे। पर हम लोगों को समझना चाहिए सीधा महामंत्र, क्योंकि हम लोगों के लिए यह ओंकार ही ऐसे महामंत्र के रूप में है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसको विशेष रूप से बताया है और सबसे अंत में श्रील प्रभुपाद जी ने, तो हम यही कहा करते हैं कथा में कि वे महामंत्र का जप कर रहे थे। ये इसमें कोई विरोधी बात नहीं है। तो मन भगवान में लगा था, एकांत स्थान था, पवित्र स्थान, जप कर रहे थे। तब जप के समय ही एक घटना घटी। एक हरिणी पानी पीने के लिए आई और जंगली पशु भी संत महात्मा से प्रेम करते हैं। हरिणी राजर्षि भरत से दूर नहीं थी, बिजकी नहीं, वहां करके निकट ही पानी पीने लगी। पानी खूब प्यास लगी थी, पी रही थी, पीते पीते भी प्यास बुझी नहीं थी। उसी समय निकट में ही कहीं सिंह की दहाड़, जिस दहाड़ को सुन करके बड़े बड़े बाघ हाथी भी डर जाते हैं, मनुष्य डर जाते हैं। तो हरिणी तो स्वभाव से डरपोक थी, चंचल थी, वो जब दहाड़ हुई तो पीना छूट गया उसका, पानी पीना छोड़ दी और सोचने लगी अपनी रक्षा के विषय में, अब क्या करूं। तो सबसे पहले रक्षा होती है कि भाग जाऊं, नहीं तो तुरंत आएगा हमको खा जाएगा। वो सिंह को देख नहीं रही थी, लेकिन ध्वनि से ऐसा महसूस होता था कि वो बहुत निकट है। तो ज्यो दहाड़ा तें ही वो उछल गई, छलांग मारी। वो अपने झुंड से बिछुड़ गई थी। हरिण समूह में चलते हैं, लेकिन उस समूह से जंगल में वो कहीं बिछुड़ गई थी, तो इसलिए बहुत चिंतित थी। तो और तब तक सिंह की दहाड़ हुई, तो उस प्यासी दशा में ही, प्यास बुझी नहीं थी, और उसी दशा में वो फिर उचक गई। पहाड़ी नदी, मतलब नदी जो पहाड़ में बहती है, उतरती है, वो कहीं कहीं उसकी धारा कम हो जाती है। जैसे हम लोग देखे हैं, जैसे गंगा जी जब हिमालय से उतरती हैं तो कहीं कहीं बहुत पतली धारा हो जाती है, लेकिन धारा बहुत तेज रहती है। तो गंडकी नदी भी ऐसे ही पहाड़ों से गुजर रहे थे, तो बह रहे थे। तो उस मृगी ने सोचा कि नदी के धारा को पार कर जाऊं, तो उस पार चली जाऊंगी तो सिंह शायद मुझे नहीं खा पाएगा। तो वो छलांग मारी नदी पार करने के लिए, लेकिन एक तो प्यासी थी, बहुत भय था सिंह का, और दूसरे गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। ये ध्यान मान नहीं रहा, वो डर के मारे छलांग मारी। जब छलांग मारी तो उसी समय घटना हो गई कि उसका गर्भ में स्थित बच्चा अपने स्थान से हट गया। गर्भ में जहां बच्चा रहता है तो वहां से बच्चा हट गया। अभी पेट में ही था लेकिन विगलित उरु भयावह गलित, बहुत अधिक भय हो गया। उस भय के कारण और अस्मरण भय के कारण वो बच्चा स्थान से चलित हो गया। और इतना ही नहीं, स्थान से तो इधर उधर हुआ ही, तुरंत योनि निर्गत, योनि से बाहर हो गया। वो उछाल मारी थी, ऊपर उठे थे, उसी समय उच्च आकाश से वो गर्भ निकल करके और श्रोतसी निपपात वो नदी प्रवाह में गिर गया। अभी बिल्कुल ताजा अभी का जन्मा हुआ बच्चा नदी की धारा में गिर गया। और सामने राजर्षि भरत देख रहे थे, उन्होंने सब देखा कैसे सिंह की दहाड़ से वो उचकी, छलांग मारी, और छलांग मारते समय ही आकाश में ही उसका बच्चा गिर पड़ा, गर्भ से पेट से निकल करके गिर गया पानी की धारा में, और उसी धारा में वो बहने लगा। तो एक तो वो बच्चा था, अभी अभी का जन्म हुआ छोटा, और दूसरा स्रोतसा अनुजमानम, स्रोतसा नदी की धारा में बहाया जा रहा था, डूब रहा था, छटपटा रहा था। स्रोतसा अनुजमानम अपवेद्धम, अपने बंधुओं से त्यक्त हो चुका था, कोई बंधु उसके साथ नहीं था। जब जन्म लेता है बच्चा गाय का या हरिण का, तो उसकी माँ उसे चाटती है, सुखी करती है, और उसके बाद दूध पिलाती है। परंतु हरिण का कोई नहीं था, उसका पिता या भाई वो तो झुंड में कहीं दौड़ थे। तो राजर्षि भरत उसको उठाए, नदी में स्वयं प्रवेश किए, जाकर धारा में से बच्चे को निकाले अपने गोद में रख करके, और सोचने लगे कि इसका पालन कौन करेगा। सबसे पहले इसके माँ के पास ले चलना चाहिए। जो नदी के पार चली गई थी उसकी माँ, तो उसको खोजने के लिए निकले बच्चे को ले करके, तो देखे कि वो एक शिला से गिर करके कंदरा में, और गिरते ही मर गई थी। तो घबराए, तो बहुत दुख था उसको। एक तो असमय में प्रसव हुआ था, वो भी स्वाभाविक नहीं, बहुत उछली थी, भय हो गया था, तो बच्चे का बिछुड़न ये सब कष्ट सह नहीं सके, उसको बहुत पीड़ा थी, उस पीड़ा से वो संभाल नहीं पाई अपने को, चल रहे थे थरथरा करके गिर पड़ी कंदरा में, और गिरते ही वो मर गई बेचारी। तो राजर्षि भरत जब बच्चे को लेकर के वहां गए तो मृगी तो मर चुकी थी, कोई चेतना नहीं थी। तब राजर्षि भरत उस बच्चे को लेकर के अपने आश्रम पर आए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो कृपण, वो बेचारा हरिण का बच्चा असहाय था, वो उसको देख करके अनुकंपया राजर्षि भरत को दया आई, दया वर्ष से उठा लिए गोद में और लेकर के आए आश्रम में। किसी भी व्यक्ति को दया आ सकती है, उस बच्चे की दशा देख करके जो मृत मातरम, उसकी मां मर गई थी और पानी की धारा में डूब रहा था, यदि राजर्षि बचाए नहीं होते तो मर ही गया होता, तो इस दशा में देख करके किसी भी व्यक्ति को दया आ सकती है। वो तो राजर्षि थे, भक्त थे, उनमें तो दया स्वाभाविक थी। ये राजर्षि भरत ने कोई गलती नहीं किया, वे हरिण को निकाले बचाए अपने आश्रम पर लाए, अपने आश्रम पर भविष्य की बात सोच करके लाए कि इस बच्चे को कोई कुत्ता खा सकता है, सियार खा सकता है या बाघ खा सकता है, इसलिए इसको ले चलना चाहिए अपने आश्रम में, उसके लिए लेकर के आश्रम पर गए। ये सब ठीक किए लेकिन गलती कहां से चालू हुई? गलती चालू ये हुई कि वे हरिण में कृत निजाभिमान, यह मेरा है, यह स्वी है, आत्मीय बुद्धि कर लिए कि यह मेरा है, और अत्यधिक आसक्त हो गए। यह आसक्ति बुरी चीज है, इसी ने राजर्षि भरत को नीचा गिरा दिया। हरिण की रक्षा करना, उसको अपने आश्रम पर लाना, यह गलती नहीं थी, पोषण पालन ये सब भी गलती नहीं थी, गलती थी उसमें आसक्ति। इसी श्लोक से यहां चालू किए हैं, हरिण कुण के उस हरिण बालक में कृत निजाभिमानस्य, कृत निजाभिमान, कृत का कर लिए निजाभिमान कि यह मेरा है, इसकी मां मर गई, मां भी रहती तो इसके लिए सहारा था, ये दूध पीता धीरे धीरे बड़ा होता, लेकिन ये दीनहीन है, असमर्थ है, और मैं ही इसका सब कुछ हूं, ये मुझे ही अपना मां 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 मानता है और पिता मानता है, अपना भाई, अपना सगे संबंधी इसका कोई नहीं है, मैं ही हूं। ये जो भावना उनकी हो गई, इन्हीं से गड़बड़ी चालू हुई। तो वे अह अह दिन प्रतिदिन रोज रोज उसका पालन पोषण लालन पीड़न चार काम करने लगे। पालन का अर्थ है दूसरे जीवों से रक्षा करना बचाना, सिंह से बाघ से भेड़िया से कुत्ता से सियार से बचाना। राजर्षि भरत इसी चिंता में रहने लगे, हमेशा अनुध्यान करते थे किसी जीव से बचाना है इसको। और पोषण, पोषण का अर्थ है पुष्ट करना, उसको खिलाना पिलाना। जहां जाते थे हरी हरी घास उसके लिए लाते थे, कोमल पत्ता और घास। बच्चा नवजात था ना, इसलिए वो कठिन घास नहीं खा सकता था, तो कोमल घास और हरा पत्ता उसको जुटाते रहते थे। और पीड़न, पीड़न का अर्थ है उसको प्रसन्न करते थे, खुजलाते थे सहलाते थे। और लालन, लालन करते थे उसे, उत्तोलन करते थे हाथ में लेकर, कभी गोद में रखते थे और कभी कभी प्रेम बस चुंबन कर लेते थे। सुखदेव जी कहते हैं इन चार कामों के अनुध्यान, अनुध्यान का अर्थ है पुनः पुनः चिंतन करते थे। यही ध्यान आता था कि कहाँ सुंदर घास मिलेगी, सुंदर पत्ता मिलेगा, कोमल पत्ता, और लेकर के खिलाएंगे उसको। लाते थे खिलाते थे और सहलाते थे। पर इन कामों में महाराज भरत को ये कभी कभी ध्यान आता था कि ये क्या ठीक मैं कर रहा हूं, तो उनका मन कहता था हाँ ठीक करता, इसमें हमारी, हमारा जप छूट रहा है, भगवान की पूजा छूट रही है, ये कोई बात नहीं। वे कुछ अपने मन से कल्पना कर लेते थे ऐसे काम के लिए, ऐसे बच्चे की रक्षा के लिए, इतने शरण में आए हुए की रक्षा के लिए अपना बड़ा से बड़ा स्वार्थ छोड़ दिया जाता है। पहले के संत महात्माओं ने ऐसा किया है, जब मैं ये गलत नहीं कर रहा हूं सही कर रहा हूं। एक तो आसक्ति कर लिए और दूसरे उसी में फिर महत्व बुद्धि, और कुछ नियम छूट रहा था वो पालन पोषण प्रीणन लालन करने में कुछ नियम छूट रहा था, तो एक एक दिन करके छूटते छूटते एक एक सह एक एक के बाद आज कुछ जप कम हो गया, ये नियम छूटा है, तो 15 कम हुआ, एक कम हुआ, दूसरे दिन 14 हुआ, इस तरह से धीरे धीरे छूट गया। एक एक सह, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से नियम छूटा। छूटते छूटते अब उसको सहलाने में, उसके पालन में आसक्त थे, तो स्नान छूटा और यम भी छूट गया। यम का अर्थ है नौ, जो काम नहीं करना चाहिए, जैसे अहिंसा, हिंसा नहीं करना, लेकिन हिंसा भी करने लगे। जाते थे घास उखाड़ते थे, कोमल कोमल घास और कोमल कोमल पत्ता, हरा पत्ता तोड़ लेते थे। ये हिंसा करने लगे। राजर्षि भरत के लिए यह हिंसा थी, किसी वनवासी वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले या संन्यास आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए यह निषेध है। यह कहा गया है कि उसे कभी हरी टहनी, वृक्ष की टहनी जो हरी हो या पत्ता हरा हो तो नहीं तोड़ना चाहिए, और हरा घास, सूखा घास खा लेना चाहिए, और सूखा पत्ता अपने आप जो वृक्ष से टूटता है वही पत्ता खाना चाहिए। ये हरी सब्जी नहीं खाना चाहिए, हरा पत्ता ऐसा शास्त्र में निर्देश है। लेकिन राजर्षि भरत का अहिंसा भी छूट गया, हिंसा करने लगे। स्नान छूट गया, अहिंसा छूट गई, और वे किसी दिन स्नान नहीं करते थे, और कुछ दिन में तिलक उलक सब छूट गया। धीरे धीरे छूट रहा था, और कतिपय न अहर गणे न, कुछ ही दिन में छूट गया, मतलब महीना नहीं लगा। अगर महीना लगा होता तो सुखदेव गोस्वामी कहते कि एक महीना या दो महीना, नहीं, कुछ ही दिन में छूट गया, मतलब महीना पूरा होने से पहले ही सब नियम छूट गया। अब उनकी झोली रोने लगी खूंटी पर। श्रील प्रभुपाद कहते थे वृंदावन में कि किसकी झोली रो रही है, झोली अगर टंगी है खूंटी पर तो उसको कहते थे किसकी झोली रो रही है, अर्थात इसमें जप नहीं हो रहा है तो ये बेचारी रो रही है, माला रो रहा है, किसकी झोली रो रही है। जो तुरंत भक्त दौड़ करके लाते थे तो ये झोली रोनी नहीं चाहिए, इसको हंसाना चाहिए रोज 16 माला जप कर, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो राजर्षि भरत की झोली रोने लगी, माला छूते नहीं थे, अब हरण को छुए कि माला को छुए, होते होते सब पुरुष परिचर्या दया भगवान की पूजा करना, मानसिक पूजा तक सब छूट गई, भगवान की आरती वगैरह सब छूट गई, क्योंकि हमेशा अनुध्यान बारंबार उसी का स्मरण करते थे, हरिण का। अनुध्यानम का अर्थ है आसक्ति, जहां मनुष्य की चित्तवृत्ति जाए, मन जाए, तो वहीं उसकी आसक्ति होती है। हरि का अनुचिंतन हो रहा था बारंबार केवल उसी का, इसलिए भगवान की भक्ति छूट गई। और भक्ति छूटने पर भी ये भावना हुई थी मैं ठीक हूं, बड़े बड़े लोगों ने ऐसा किया है, अरे हम आसक्त हुए तो क्या हुए, यह आसक्ति ठीक है। इतिहास कहता है ना, जैसे दधीची मुनि थे, उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थि का दान कर दिया, तो मन बहाना खोजता रहता है, कोई न कोई आदर्श मान लगा, हाँ उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया, तो इस हरिण बच्चे के कारण मेरा स्वार्थ नष्ट हो रहा है, भजन छूट रहा है। तो उन्होंने ऐसा सोच लिया, भजन तो करना ही है, कल कर लेंगे। और बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, फिर भी वही आसक्ति। बच्चा बड़ा हो गया तो अब अपने से जा सकता था ना घास चरने, अब उसका चिंतन क्या करना है, या सिंह आदि के आक्रमण से अपने को बचा भी सकता था, इधर उधर भाग सकता था, और नहीं भी बचे तो क्या ये घर छोड़ करके आए हैं जंगल में सब पशु बचाने के लिए। तो प्रकृति का नियम है, जो बलवान है वो खाता रहता है छोटे छोटे जीवों को। तो प्रकृति के नियम को बदलने आए हैं, तो भजन करने आए हैं ना, पर आसक्ति बस वे ऐसा सोचते थे। महाभारत में एक संवाद में इसको व्यक्त किया गया, सत्य बड़ा है कि दया बड़ी है, ये नहुष महाराज ने पूछा है। नहुष जो सर्प बन गए थे, उनकी जो युधिष्ठिर महाराज से भेंट हुई थी, वो भीम को पकड़ लिए थे, तो महाराज युधिष्ठिर से पूछा गया कि सत्य बड़ा है कि दया बड़ी है। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि अपने अपने स्थान पर दोनों बड़े हैं, देश काल परिस्थिति से पता चलेगा कि कौन बड़ा है। जैसे मान लीजिए इस मंदिर में मंगला आरती चल रही है या कभी आरती चल रही है, पूजा चल रही है, और पुजारी पूजा में तत्पर है, ये सत्य है। तो भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम जपना, ये सत्य है। और उसी समय कोई भक्त गिर जाए मंदिर में, उसको उठाना जरूरी हो, तो पुजारी को क्या करना चाहिए उस समय? वो सोचे कि पूजा छोड़ना ठीक नहीं है, इसको उठाना ठीक नहीं है, भले मर जाए कुछ भी हो जाए। तो उस समय पूजा को रोक करके और उस भक्त की रक्षा करना, उठाना और फोन करके एम्बुलेंस मंगाना, यह दया है, ये बड़ी हो जाएगी। परंतु वो सब समय बड़ी नहीं रहेगी, सब समय भगवान का भजन ही बड़ा रहेगा, जिसको सत्य कहा गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो एम्बुलेंस लेकर के घुमा करे शहर में, कहाँ कौन गिर रहा है, कौन लंगड़ा है, कौन कैसा है। हर एक समय दया बड़ी नहीं रहती है, विशेष परिस्थिति में दया बड़ी हो जाती है, और सब समय सत्य बड़ा रहता है, सब समय भगवान का भजन बड़ा है। महाराज युधिष्ठिर ने ये बात कहा तो वो बच्चे को बचाए ठीक है और धर्म था, लेकिन इस तरह से आसक्त होना, उसमें उसी का चिंतन रात दिन करना, ये अच्छा नहीं था। इसके चलते वे हरिण के वियोग में मर गए और उनको हरिण होना पड़ा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दयामपि त्यजेत भक्ति बाधनी मेति दर्शन। भगवान कृष्ण ने दिखाया कि यदि दया भी भक्ति में बाधा देने वाली है तो उसको छोड़ देना चाहिए। दया एक बहुत बड़ा गुण है मनुष्य में, लेकिन दया भी त्यागने योग्य है। कब? जब भक्ति में बाधक हो, जब हमारा जप करने में पूजा करने में दया बाधक हो जाए तो त्यागने योग्य। भगवान कृष्ण ने इसीलिए मृग का पोषण करवाया राजर्षि भरत से, वो पोषण किए, लेकिन कृष्ण चतुर्मा अम्बुधि, कृष्ण चतुरता के सागर हैं, उन्होंने राजर्षि भरत से हरिण का पोषण करवाया, लेकिन बाद में महाराज भरत को पश्चाताप के सागर में डाल दिया। अनुताप अम्बुधौ क्षिप्त्वा, अनुताप ग्लानि, अनुताप पश्चाताप के सागर में डाले उनको, और अंत में अपने प्रेम के सागर में। राजर्षि भरत का हित किए भगवान कृष्ण, वो हरिण में आसक्त हो गए। जब उनको हरिण का शरीर मिला तब वे महान शोक में, अनुताप में डूब गए। बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं गिर गया, इतने बड़े ऊंचाई से मैं भगवान के प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर चुका था, तो यहां से गिर गया। राज छोड़कर, स्त्री पुत्र छोड़कर सब वन में गया था, और मैं हरिण में आसक्त हो गया। उनको इतना बुरा लग रहा था कि वे हरिण जब बने तो अपनी जन्मभूमि को तुरंत त्याग दिए। जहां राजर्षि भरत का जन्म हुआ था हरिण के रूप में, उस जन्मभूमि को त्याग दिए। वो हरिण अपना घर, मतलब जिस जंगल में रहता था वो जंगल छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपने साथी संघाती सबको छोड़ दिया, और अकेले वो हरिण चल करके कालंजर से फिर हिमालय में आ गया, फिर गंडकी नदी के तट पर आ गया, क्योंकि वहीं उसी स्थान पर उसने भक्ति किया था। राजर्षि भरत को ये बात याद थी, प्रत्यक्ष जैसी, इसलिए बहुत अनुताप में पड़ गए, पश्चाताप में। और जब उन्हें ब्राह्मण का शरीर मिला, जब भरत हुए, तो उस समय इतने सावधान थे कि वे कोई भी योग्यता नहीं दिखाते थे। उनके पिता सोचते थे कि ये पढ़ लिख जाएगा, ब्राह्मण का काम करेगा, संध्या बंदन आदि सीख जाए, परंतु वो चार महीना पढ़ाए, चार महीना रतवाए, परंतु वो सब कुछ जानते थे पर शुद्ध उच्चारण नहीं सीख पाए। गायत्री चार महीना रटवाने के बाद भी ओम भोर भुआ बोलना होता था तो भो 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 ये कर रहे थे। क्यों ऐसा करते थे? मैं यदि योग्य बन जाऊंगा तो फिर संसार में फंस जाऊंगा, यहां पूजा कराओ, यहां दक्षिणा लो, ये करो ये करो। तो उस बार तो हरिण में फंस गया, हरिण के बच्चे में, अब हरिणैनी के फेर में पड़ जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। इसीलिए कोई भी काम ठीक से नहीं करते थे, अपने को अयोग्य साबित करते थे, गूंगे की तरह रहते थे, बहरे की तरह। कोई बहुत जोर से बुलाता था नहीं सुनते थे, सुनने की शक्ति थी लेकिन दिखाते थे कि मैं बहरा हूं, गूंगा हूं, और अंधे की तरह अंधा हूं। इंद्रियों में शक्ति होते हुए भी देखने सुनने आदि सबकी वे ठीक से नहीं सुनते थे। हमारे यहां एक कहावत है, कहते हैं लोग कि नीक गीत गाइब में दरबार धक जाए। पहले जमाने में कोई बहुत अच्छा गीत गाता था तो उसे राजा के यहां से बुलावा आता था कि आना है दरबार में और तुमको राजा को गीत सुनाना है। तो कभी कभी ऐसे गीत सुनाना पड़ता था, गीत सुनाने के बाद कुछ मिलता नहीं था, केवल परेशानी होते थे। एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं ठीक से गाऊंगा ही नहीं तो फिर हमको नहीं धर करके दरबार में ले जाएंगे। तो नीक गीत गाइब न दरबार धक जाए। नीक गीत, नीक मने अच्छा, मैं अच्छा गीत गाऊंगा ना दरबार पकड़ करके जाऊंगा। राजर्षि भरत जट भरत जी के रूप में सोचते थे मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे ऐसा साबित हो कि अब यह विवाह के हो योग हो गया, इसका विवाह कर देना चाहिए। ये ऐसे बेढंगा रहते थे कि कोई विवाह के लिए आए भी तो देख करके भाग जाए। ऐसे नलायक के साथ क्या हम अपनी लड़की को दान करेंगे। तो ऐसे वो करते थे, जो देखता ही नहीं, सुनता ही नहीं, बोलता ही नहीं, उसके साथ क्या कोई संबंध करेगा, कौन उसको जाप देगा, कौन नौकरी पर रखेगा। तो पिताजी तो मर गए ऐसे ही, और इनकी जो मां थी वो पिता के साथ सती हो गई। इनकी दो माताएं थीं, तो ये नौ भाई थे, तो सौतेले भाइयों ने अब इनको सोचा कि कुछ पढ़ा लिखा दें, लेकिन जब पिताजी हार गए तो ये क्या करेंगे। उन्हें पढ़ाने का प्रयास किए, पढ़ा नहीं पाए। और ये भोजन तो चाहिए, तो ये भोजन भोजन के लिए आकांक्षा करते थे। भगवान ने कहा है भागवत में, आहारार्थम समी है, तब भोजन के लिए सन्यासी को भी चेष्टा करनी चाहिए। सात घरों में भिक्षा मांग करके और भोजन करें। भोजन के लिए शरीर चलाना जरूरी है, तो भोजन कहीं कहीं कोई दे देता था जो अमृत की तरह खा लेते थे, बहुत स्वाद, बहुत अच्छा से। कभी कभी लोग इनसे काम कराते थे गांव में, कहते चलो हमारे यहाँ एक काम है, फिर चले जाते थे। तो जब भाइयों ने देखा कि ये दूसरे का काम कर रहा है तो अपने घर काम कराना ठीक है। तो धान के खेत में जो जानते हैं खेती करना और देखते हैं कि ये पहले मिट्टी को पानी डालकर सॉफ्ट करना पड़ता है, और कहाँ भूमि ऊंच है कहाँ नीच है, नीच जहाँ भूमि है वहाँ पर ऊंच भूमि से फावड़ा से काट करके मिट्टी डालते हैं। इनको लगाते थे काम करने के लिए, लेकिन जहाँ नीच है वहाँ और खान करके नीच कर देते थे, और जहां ऊंच होता था वहां और ऊंचा, इसलिए भाइयों ने सोचा तो बेकार है, ये कोई काम नहीं करा, ये केवल फसल की रक्षा कर सकता है। जैसे त्रिमय पुरुष बनाते हैं ना खेतों में, आपने देखा होगा कि वो घास का पुरुष बना देते हैं, कोई फटा पुराना कपड़ा पहना देते हैं जिसे नीलगाय या सुअर ये समझें कि आदमी खड़ा है, तो नहीं आते हैं, भाग जाते हैं। तो इसी काम को उन्होंने सोचा भाइयों ने कि तो अच्छा है, इसी को बैठा दिया जाए, ये तो जीवित है न। कम हम लोग कहते थे कि कोई पशु आवे तो तुम बोलना, लेकिन बोलना तो जानते ही थे, गुंगा थे, कहां से बोले, बैठे रहते थे खेत पर, और गांव से बहुत दूर खेत पर बैठे रहते थे, किसी जीव को कभी हटाते नहीं थे। तो घटना घट गई, एक शूद्रों का राजा था, नीच जाति का जंगली व्यक्ति, उसको कोई बेटा नहीं हो रहा था, तो बेटा प्राप्त करने के लिए, पुत्र प्राप्त करने के लिए वो काली माता की पूजा किया। तो काली जी को वो नर बलि देना चाहता था, अपनी मान्यता के अनुसार ये तमोगुणी चीज है, लेकिन वही वो करता था। तो जिस व्यक्ति को बलि देना था वो व्यक्ति किसी तरह से हाथ से चाहे जैसे बंधन काट करके भाग गया। उसको पता चल गया ना कि हमको मारेंगे लोग, बलि देंगे, तो भाग गया। अब किसको बलि दें, तब खुद उस डाकू के, उस शूद्र के आदमी खोजने लगे उस व्यक्ति को, इधर उधर टॉर्च जला करके जहां तहां खोज रहे थे, कहां भागा। वो भागा तो भागा, अब तो जान बची तो लाखों पाए। अब रात्रि का समय था, खोज रहे थे उस व्यक्ति को, तो वो तो नहीं मिला, जब भरत जी मिल गए, टॉर्च जला करके उन लोगों ने देखा, बिल्कुल शरीर ठीक है, कोई विकलांग नहीं है, अंगुली उंगली अगर कहीं कटा छटा होता तो वो बलि नहीं दी जाती, तो रंग सब ठीक है और बिल्कुल बैल की तरह है, हिष्ट पुष्ट शरीर है, इसमें तो बहुत खून निकलेगा, इसको ले चलो। तो लोग कहें कि पकड़ लिया, ले चले। उसमें लोग बहुत प्रसन्न थे, बहुत हैरान हुए थे उस पुरुष को खोजने के लिए, लेकिन ये मिल गए तो बहुत खुश हुए, बांध करके ले गए, खूब अच्छा से बांध लिए। उससे भय था कि ये भाग जाएगा, बलवान है, बंधन तोड़ करके भाग जाएगा, वो भाग गया पहले आदमी जो मिला था, तो ये तो निश्चित भाग सकता है। लेकिन वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, यह माता काली के लिए अच्छा पुरुष है, इसकी बलि देंगे, सब सुन रहे थे जब भरत जी, लेकिन फिर भी तैयार हो गए चलने के लिए। वो लेकर के आए काली जी के मंदिर में, रात्रि का समय था, और वहां इनको ला करके अपने विधि से सब गाना बजाना हाको डाको सब किए, खूब गा रहे थे, बहुत खुश थे गाना गाने वाले कि आज गाएंगे, माता जी के दरबार में फेस्टिवल है और हमको मनुष्य का गरम गरम खून और मांस खाने को मिलेगा, इसलिए बहुत प्रसन्न थे। तो उन डाकुओं का जो पुरोहित था वो भी एक शूद्र था, वो ब्राह्मण नहीं था। तो पुरोहित तलवार को तीखा कर रहा था, उसे फरगा रहा था, शान धरा रहा था, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एक बार में उस पशु का मस्तक कट जाना चाहिए, जिसकी बलि देनी है उसको एक बार में कट जाना चाहिए। इस तरह से मनुष्य की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अतिशय नीच समाज में ये चलता था। वो सोचते थे एक बार में यदि मस्तक कट जाएगा तो ठीक नहीं है, नहीं ये ठीक है, एक बार में कट जाना चाहिए। इसके लिए तलवार को और तीखा कर रहा था और जटभरत जी को काली जी के सामने किया गया। उनको सब मालूम है कि ये हमारी जान मारेंगे, लेकिन उनके शरीर में तो आसक्ति थी ही नहीं, तो उनको सब पकवान खिला रहे थे। लाल कपड़ा एक रंगा पहनाए, माला डाले और पुआ पूड़ी चना जो कुछ खाने को दिए तो सब खा लिए, अच्छा से खा लिए। और इसके बाद बैठाए और ये बोले, सावधान, सब लोगों को देखने के लिए कहे, अब इसका मस्तक काटा जाएगा। एक दो तीन बोल करके वो पुरोहित ज्यों तलवार मारना चाहा, त्यों माता काली जी मूर्ति में से प्रकट हो गई, मूर्ति फोड़ करके प्रकट हो गई और उस पुरोहित के उस शूद्र के तलवार को छीन करके और सबसे पहले उसी का मस्तक काटा है। और वहां जितने लोग उस हाल में बैठे थे, और माता भद्रकाली बहुत विकट रूप हो गई, क्रोध से तमतमा गई और सबको भज भज काटने लगी, सबका मस्तक काटने लगी। तो उनकी सखियां प्रकट हुई और वे सब सिरों से गेंदा खेलने लगी और फुटबॉल मचा, सिर का फुटबॉल, और गरम गरम रक्त निकल रहा था उसी को रोक रोक करके माता काली पी रही थी। उन हिंसकों को मार दी। इसे सिद्ध है कि देखिए भगवान कृष्ण का भक्त बच गया और जिनका भक्त वे लोग थे उस काली जी ने अपने भक्तों को मारकर खत्म कर दिया। इसे शिक्षा मिलती है कि हम यदि भगवान के भक्त हैं तो देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं। भगवान शिव, काली जी, ये सभी उनकी रक्षा करते हैं जो भगवान के भक्त हैं, और अपने भक्तों को, अपने पुजारियों को तो काट कर फेंक दिया। जब कोई व्यक्ति किसी वैष्णव को मारना चाहता है तो वो वही मार दिया जाता है, वो नहीं मरता, वैष्णव नहीं मरता है। भगवान का भक्त, इन्होंने प्रार्थना भी नहीं किया, भगवान कृष्ण से प्रार्थना नहीं किए कि हमें बचाइए, और न काली जी से कहा, परंतु भगवान सब जगह रक्षा करते हैं। सभी वस्तुओं में है, सब जगह है। जिस तलवार से इनको मारा जा रहा था उस तलवार में भी भगवान थे। उन्होंने उस डाकू के सरदार को पहले मार दिया, अपने भक्त को बचा लिया। तो इस तरह से शरीर काटने का अवसर आने पर भी राजर्षि भरत घबराए नहीं, इतना सावधान थे, देह से परे थे, भगवान में इनका चित्त लगा हुआ था। तो बहुत अफसोस में पहले पड़े कि हाय मेरी भक्ति छूट गई, मेरा जप छूट गया, अब इस हरिण के देह में मैं क्या कर सकता हूं। तो भगवान ने उनको अनुताप में डाला और इसके बाद अपने प्रेम के समुद्र में। इसलिए सीखने की बात है कि दया भी भक्ति में बाधिका है तो उसे नहीं करना चाहिए। राजर्षि भरत तो विरक्त हो चुके थे, वन में चले गए थे, और वहां भी उन्होंने दया दिखाई। दया अच्छा काम है, लेकिन भक्ति में बाधक दया हो तो वो तो नरक है। इसी तरह से बच्चों से, पत्नी से स्नेह करना ये स्वाभाविक है, लेकिन उसकी कुछ सीमा होनी चाहिए। भक्ति के समय उनकी आसक्ति ठीक नहीं है। जैसे हम लोग दाल में नमक डालते हैं तो काम भर डालें तो स्वाद बढ़ता है, सब्जी या दाल का स्वाद बढ़ता है, लेकिन जहां 50 ग्राम डालना है और 1 किलो दाल देंगे तो क्या होगा, वो दाल भी फेंकनी पड़ेगी। तो इसी तरह बच्चे से स्नेह ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। यथार्थ जो जितना जो है उतना ही स्नेह करें, अधिक करेंगे तो मरेंगे। तो इसे सीखना चाहिए। और विशेष करके जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनको तो बिल्कुल आसक्त नहीं होना चाहिए। गृहस्थों के लिए थोड़ी सी छूट है, पर भक्ति में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। भक्ति के समय, आरती के समय आरती ही करनी है, पाठ करते समय बच्चे दूर रहें, जप करते समय मोबाइल शत्रु है। जप कर रहे हैं तो मोबाइल को पास में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो जप में बाधक होगा, वो कुछ तो कुछ उठा करके हाई ही करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। तो हम लोगों को इस इतिहास से यह शिक्षा लेनी चाहिए और सावधान होना चाहिए। अपनी भक्ति के जो भी नियम हैं, मंगला आरती से लेकर के स्वयं पर्यंत जो भी भक्ति के अंग हैं, उस अंग में बाधा नहीं होनी चाहिए। ये शिक्षा मिलती है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण महाराज, मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर पे चढ़ाई किया
और पुजारियों को सबको काट डाला, मार डाला। वो तो इसलिए कि वो दया के पात्र नहीं थे। और तो किसके ऊपर अनुग्रह किया महाराज उन्होंने?
क्या प्रश्न है?
शंकर भगवान ने किस पे अनुग्रह किया? जब सोमनाथ मंदिर में जो मोहम्मद गजनी ने चढ़ाई किया तो उसने पुजारियों को सबको मार डाला और शिव भगवान खुद भी उनके मलेच्छों के साथ में चले गए अपने, तो वो किस पे अनुग्रह हुआ उसने?
क्या पूछ रहे हैं? पुजारियों को मार करके सब लूट ले गया तो शिव जी क्यों नहीं रक्षा की? प्रश्न ये कथा सुनते समय ये सब कहां से आता था मन में? कोई ये सब प्रश्न पहले से जमा रखते हैं क्या? नहीं, ये आप ऐसा प्रश्न जो बाद में वक्ता आएगा उससे पूछ लीजिएगा। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम ये सब उत्तर नहीं दे सकते हैं। इस कथा में जो प्रश्न बनता है वही प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न स्टोर से निकाल निकाल करके नहीं पूछना चाहिए।
हरे कृष्ण महाराज जी, जब भरत महाराज हिरण के शरीर में थे उस समय भी उनकी चेतना पूर्ण कृष्ण भावना भावित होने सब याद था, तो जब उन्होंने हिरण का शरीर त्यागा तो भगवत धाम क्यों नहीं गए?
उन्हें ब्राह्मण का शरीर इसमें दिया गया कि और अधिक पक्का हो जाए। कृष्ण भावना कभी पूरी नहीं होती है, इसमें हमेशा कमी रहती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मुझमें कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, मैं तो रोता हूं ये दिखाने के लिए कि मैं कृष्ण का भक्त हूं। लोग मुझे समझे कि ये कृष्ण का भक्त है तो ये प्रशंसा लेने के लिए मैं रोता हूं। उनके लिए यह ठीक नहीं है, लेकिन प्रेम प्राप्ति या भगवान का भगवान की भावना में हमेशा उत्कर्ष है, नित नवायमान है, यह नित नया बढ़ता रहता है। तो ये तो स्वाभाविक है ना कि हरिण के शरीर में अभी कृष्ण भावना में अभी कमी थी, जैसे सोचते थे भक्ति करना उस तरह से कर नहीं पाए, इतनी पूर्ण कृष्ण भावना भावित थे। हरिण के शरीर में कभी हरा पत्ता नहीं खाए, हरी घास नहीं खाए, सूखा पत्ता खाते थे और सूखी घास, और वो भी जहां जन्म हुआ उसका त्याग कर दिए उस स्थान का, अब चले आए हिमालय। भगवान गीता में कहते हैं अनेक जन्म संसिद्ध तत्व जाति पराम गति, कई जन्म तक भक्ति करने पर व्यक्ति सिद्ध होता है। और भक्ति करना परम सुखमय है, इसीलिए शरीर ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होती, आनंद आता है। राजर्षि भरत ने जब हरिण शरीर प्राप्त किया तो वे कालंजर पर्वत से चले गए पुलाहाश्रम, और वहां गंडकी में डूब करके सुसाइड किए, हरिण शरीर छोड़े। वो जानते थे इसके बाद जन्म मिलेगा, और ये भी जानते थे कि हरिण का चिंतन करके मरा हरिण के बिजोग में तो हरिण बना, अब ऐसा नहीं करूंगा। भक्ति के कार्यों में व्यत व्रत रह करके वो शरीर छोड़े, जप करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए तब उन्हें मनुष्य का शरीर प्राप्त किया हुआ। और उस मनुष्य शरीर में भी परम श्रेष्ठ शरीर ब्राह्मण का शरीर,
महाराज जैसे ब्राह्मण शरीर होने से अच्छा है। कभी कभी कोई कोई लोगों को बोलते हैं कि ब्राह्मण तो अच्छा है लेकिन कैसे त्रेता युग में ये बोले थे ना कि हमको ब्राह्मण, एक बुक में लिखा है कि जो कॉलेज में ब्राह्मण है वो सब असुर कुल में जन्म थे, असुर लोग कॉलेज में ब्राह्मण जन्म लिए। जो लोग असुर लोग थे त्रेता युग में वो सब कलयुग में ब्राह्मण का धर्म जन्म लिए, तो कैसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो हम लोग क्या असुर लोग हैं?
नहीं, हो उसका भाव लेना चाहिए। जो ब्राह्मण होकर के भी गलत काम करते हैं, असुर जैसा काम करते हैं, तो पहले वे असुर हैं, पहले रहे हैं असुर। जैसे कसाई खाना खोलना, ये ब्राह्मण का काम नहीं है ना, असुर का काम है। लेकिन हमारे देश में सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने चार कसाई खाना खोला, दिल्ली, बंबई और चेन्नई, कोलकाता, चार स्थान पर। अमेरिका का राष्ट्रपति आया था यहाँ और उसने सलाह दिया कि आपके देश में बहुत पशु है, तो कुछ पशु बेकार हैं, बूढ़े हैं, चाहे जैसे तैसे, तो खाते तो हैं ही, तो जो बेकार पशु हैं उनको मार दीजिए तो उनका भोजन बचेगा तो अच्छे पशु खाएंगे। तो जो अच्छे पशु हैं उनके लिए भोजन बचेगा खाएंगे, और इनको मार करके इनका चाम बेचिए, चमड़ा बेचिए, तो बहुत उसकी खपत होगी विदेशों में। तो ये अच्छा सुझाव हुआ, एक राक्षस का सुझाव था, ये एक असुर का सुझाव था, और दूसरे असुर ने, इंडियन असुर ने ग्रहण किया। उसने ग्रहण किया और कसाई खाना खोला। तो भारत को एक साधु ने कहा था कि यह सबसे बड़ा चमार है, चाम का बिजनेस करता है। कानपुर में ऐसे बहुत फैक्ट्रियां हैं जहां से चाम का निर्यात होता है, चाम के बने हुए सामान। और यहां तक कि आजकल आप लोग सुने होंगे चाम का कुर्ता भी पहनते, जैकेट, जाड़ा में चाम का जूता पहनता है, काम चाम का जैकेट और चाम का टोपी, और पेट में पशु का मांस है। इस तरह से ये बड़े बड़े पदों पर स्थित हो करके और ब्राह्मणों ने यह काम किया है, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ब्राह्मण सब असुर जन्म थे पहले, और वही असुर स्वभाव अभी भी है, पर उसका केवल भाव है, वास्तविक क्या स्थिति है कि जो पहले असुर होता है तो असुर जोनि में जन्म लेता है। तथो जानते अधिनाम गति, भगवान ने कहा है असुरिन जोनि ना पन्ना मूढ़ा जन्मने जन्मने, जो असुर लोग होते हैं वे और नीचे नीचे जोनियों में जाते हैं, तो असुरों को ब्राह्मण का शरीर नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी ब्राह्मण शरीर में भी ये पाप करते देखे जाते हैं तो अनुमान होता है कि ये असुर हैं, पहले असुर थे, पर इसको हूबहू नहीं मान लिया जाएगा कि असुर सब ब्राह्मण शरीर में आए, सभी ब्राह्मणों को असुर मान लिया जाए।
हरे कृष्ण।
असुर के लक्षण ब्राह्मणों में देखे जाते हैं, हम बड़े हैं, हम महान हैं, और असुरों के कार्य में लगे रहते हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो आंदोलन चालू किया गया हमारे देश में, ये अमेरिका से इंग्लैंड से आया अपने देश में, तो यहां आने पर सबसे ज्यादा विरोध ब्राह्मणों ने किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ब्राह्मण हैं, जन्म से ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, ऐसे बिना शरीर बदले ब्राह्मण नहीं बना जा सकता है। पर श्रील प्रभुपाद जी शास्त्र और संतों के आदर्श से बोल रहे थे, उन्होंने ब्राह्मण बनाया है अमेरिकन लोगों को, यूरोप के लोगों को, और यहां भी जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे उनको ब्राह्मण बनाए, और सच्चा ब्राह्मण बनाए, केवल नाम के ब्राह्मण नहीं, जो सफाई से रहते हैं अच्छे ब्राह्मण, मन मन में शांति रहती है, क्रोध नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं, परोपकार में रहते हैं, प्रचार में, तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण बनाया। तो 1970 में प्रभुपाद जी के भक्त जब आए भारत में, तो सब जगह से ब्राह्मणों ने विरोध किया कि नहीं, एक तो बात है कि वो लोग कहे कि संन्यास केवल ब्राह्मणों को दिया जा सकता है, और ब्राह्मण जन्म से ही होते हैं, और प्रभुपाद जी कहते थे नहीं, कर्म से ब्राह्मण होते हैं, कर्म और प्रकृति के गुण के अनुसार जो सत्गुण में है वे ब्राह्मण है। इसलिए प्रभुपाद जी का भी विरोध किया इन ब्राह्मणों ने, इसीलिए लक्षण मिलता जुलता है कि असुर हैं।
हरे कृष्ण महाराज। जय भारत महाराज का जो विशेषता यहाँ दिखाई दे रही है,
साधारणतः महाराज भरत महाराज का एक जो अनर्थ का प्रकाश हो रही है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के अनुसार हृदय दौर्बल्य. सो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद फिर माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ में कहे हैं कि अनर्थ निवृत्ति का आत्यंतिकी स्तर अर्थात हृदय दौर्बल्य का आत्यंतिकी स्तर आसक्ति स्तर में ही हो जाते हैं. तो मेरा प्रश्न यह है कि तब करीब प्रेम स्तर में पहुंचने वाले एक व्यक्ति उनका जीवन में इस प्रकार हृदय का दुबलापन जैसे अनर्थ जिसका आत्यंतिक निवृत्ति आसक्ति स्तर में ही हो जाते हैं वो कैसे वापस आते हैं ऐसे उन्नत मार्ग स्तर पे, कृपा करके थोड़ा बताएंगे.
यहाँ तो यही दिखाया है ना, बहुत ऊंचे स्तर पर गए हैं भक्ति या शक्ति हो गई हारी में. असल में कभी कभी भ्रम हो जाता है कि जैसे राजर्षि भरत को भ्रम हो गया कि हारी बच्चा को बचाना रक्षा करना खिलाना पिलाना यही हमारा कर्तव्य है. और उसके चलते भक्ति के अंगों के प्रति उदासीनता होने लगी. यह तो बात स्पष्ट है कि इतने आसक्त थे भगवान में कि उसके लिए उन्होंने राज छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और भगवान की पूजा करते थे वन में कंद मूल फल आदि से, तो उनके आंखों में हमेशा आंसू रहता था, रोमांच शरीर में वाणी गदगद रहती थी. पर उस अवस्था से वे गिर गए. तो चक्रवर्ती पाद जी के अनुसार तो यही सिद्ध होता है कि भगवान ने किया शिक्षा देने के लिए, लेकिन केवल हम लोग यह बात कहें तो ये इसे फायदा नहीं होगा कि कृष्ण ने किया. कृष्ण उनको डाल दिए अनुताप में, अफसोस के समुद्र में डाल दिए किया. तो कृष्ण ने वास्तव में, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपनी असावधानी से अभी कृष्ण भावना से स्खलित हो गए, तो यही ज्यादा उपयोगी है हम सबके लिए. हमें प्रत्येक क्षण सावधान रह करके कृष्ण भावना की रक्षा करनी है. और दया भी हो, देखने में लगता है कि ये बड़ा अच्छा काम है, लेकिन उसे भी छोड़ा जा सकता है भक्ति की रक्षा के लिए. भक्ति में बाधक धर्म को त्याग देना चाहिए. तो यही प्रभुपाद जी कहते हैं और सभी आचार्य लोग यही कहते हैं. तो भगवान अपने बड़े भक्त को ही गिरा करके दिखाते हैं ना अन्य भक्तों को सावधान करने के लिए. जैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इससे सावधानी आती है ना कि सावधान होना चाहिए. तो भगवान का क्या अभिप्राय है इसको समझना बड़ा कठिन है, लेकिन यही है कि जो कुछ घटना हुई राजर्षि भरत के जीवन में ये कृष्ण की इच्छा से हुई. अच्छा हरे कृष्ण।